अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की उपनिषद का विचार इस सत्र में प्रारंभ हुआ है। प्रश्न उपनिषद मांडुक्य उपनिषद का व्याख्यान रूप है, मुंडक उपनिषद का व्याख्यान रूप है, मांडुक्य का नहीं। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के ही मंत्र भाग की है और अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग की प्रश्न उपनिषद है। इसमें 6 प्रश्न तथा उन 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक मुंडक प्रतिपादित अर्थ का विस्तार से कथन हुआ। तो हम लोग 16 तारीख या 17 को ये प्रस्तावना में देख रहे थे कि मुंडक उपनिषद के दो द्वारा प्रतिपादित तो दो प्रकार की विद्या है, परा और अपरा। उन परा विद्या तथा अपरा विद्या का ही निरूपण यहां प्रश्न उपनिषद में हो रहा है। 3 प्रश्न तथा उनके उत्तर के माध्यम से अपरा विद्या के स्वरूप को तथा 3 प्रश्न उत्तर के माध्यम से परा विद्या के स्वरूप को बताया गया। प्रथम 3 प्रश्न तथा उत्तर अपरा विद्या का सफल वर्णन करने वाले हैं। अपरा विद्या है कर्म तथा उपासना, इसे अपरा विद्या कहा जाता है। अपरा विद्या का कर्मात्मक जो रूप है उसका वर्णन प्रश्न उपनिषद में नहीं है, क्योंकि कर्म कांड के द्वारा विस्तार से कर्म का वर्णन हो चुका है। अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग का जो कर्म कांड, ये तो ज्ञान कांड है ना, प्रश्न उपनिषद। तो कर्म कांड में विस्तार से कर्म रूप अपरा विद्या का अंश बता दिया गया है। अपरा विद्या का जो द्वितीय अंश है उपासना, उसका वर्णन यहां पर होगा। और कर्म उपासना उभय रूपा अपरा विद्या का फल संसार है, अपरा विद्या संसार प्राप्ति का साधन है। तो संसार का वर्णन करने के लिए प्रथम प्रश्न और उसका उत्तर है। द्वितीय प्रश्न तथा तृतीय प्रश्न तथा उसके उत्तर के माध्यम से अपरा विद्या के उपासनात्मक स्वरूप को बताया गया है। संसार का साधन रूपा जो अपरा विद्या का उपासनात्मक अंश है वह प्राण उपासना, संसार की प्रापक अनेकों प्रकार की उपासना है, उसमें प्रधान उपासना है प्राण उपासना, उसे बताने के लिए द्वितीय और तृतीय प्रश्न तथा उत्तर है। और चतुर्थ प्रश्न वो है मुंडक उपनिषद में आए हुए प्रसिद्ध दो मंत्रों का व्याख्यान, यथा सुदीप्तात् पावकात् विष्पुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्त्यः स्वरूपा इत्यादि मंत्र की तथा दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः, इस मंत्र की व्याख्या वो पराविद्या है और पराविद्या के विषयभूत अक्षर तत्व का यानी परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है तद विषयक प्रश्न तथा उत्तर चतुर्थ प्रकरण है और पंचम प्रकरण में बताया जाएगा परब्रह्म विद्या की प्राप्ति पराविद्या की प्राप्ति का अंतरंग साधन प्रणवोपासना। तो प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते इस मुंडक मंत्र में प्रणव उपासना का वर्णन है और उसी मंत्र की व्याख्या पंचम मंत्र को माना जाता है प्रश्न उपनिषद में। तो वहां पर ओंकार उपासना परब्रह्म दृष्टि से कैसे होती है इसे स्पष्ट किया जाएगा पंचम प्रश्न में। और अंतिम प्रश्न जो है षष्ठ प्रश्न, उससे मुंडक के बाकी मंत्रों की व्याख्या होगी। ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि है मुंडक उपनिषद के अवशिष्ट मंत्र और उनकी व्याख्या षष्ठ प्रश्न तथा उसके उत्तर के रूप में यहां प्रश्नोपनिषद में आएगी। इस प्रकार प्रश्न उपनिषद के छह प्रश्न और उनके उत्तर रूप ये प्रश्न उपनिषद पूरा ग्रंथ है, एक उपनिषद है। उसका संक्षेप में प्रतिपाद्य विषय क्या होगा ये ध्यान में आता है। तो मुंडक उपनिषद प्रतिपादित पराविद्या अपराविद्या को सफल वर्णित करना मुंडक उपनिषद का कार्य है। इसी के लिए क्या नाम है प्रश्न उपनिषद का आरंभ इसी के लिए है। यदि तो सीधे सीधे व्याख्यान प्रारंभ हो जाना चाहिए, लेकिन बीच में एक आई है आख्यायिका कथा सुकेशा आदि छह ऋषि हैं और वो आचार्य पिपलाद जी के पास जाते हैं, उनको प्रश्न करते हैं, आचार्य पिपलाद जी उत्तर देते हैं। ये सब कथा बताने की क्या आवश्यकता है? ये एक सहज आशंका हो सकती है। इस आशंका का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने संबंध भाष्य में बताया कि कथा के माध्यम से इस प्रश्न उपनिषद प्रतिपादित विद्या की प्रशंसा होती है, महात्म्य समझ में आता है। तो प्रश्न उपनिषद प्रतिपादित विद्या की प्रशंसा जब प्रश्न उपनिषद का अध्ययन करने वालों के सामने होगी तो जो अर्थ बहुत प्रशंसनीय होता है उसे बताने वाले ग्रंथ को पढ़ने की तीव्र इच्छा हो जाती है। तो प्रश्न उपनिषद प्रतिपादित तो विद्या की महत्ता जब प्रश्न उपनिषद के अध्ययन में प्रवृत्त होने वाले विद्यार्थियों के सामने होगी तो प्रश्न उपनिषद को पढ़ने की तीव्र इच्छा हृदय में उत्पन्न होगी, अंतःकरण में उत्पन्न होगी। और तीव्र इच्छा पूर्वक किया हुआ जो कार्य है पूर्ण मन लगा करके किया हुआ जो कार्य है रुचि लेकर के किया हुआ जो कार्य है वह व्यक्ति अच्छी तरह से संपन्न कर सकता है, क्योंकि रुचि है उसमें। और जिसमें रुचि नहीं होती वो मन मार करके करना पड़ता है तो उसके अच्छाई में अच्छी तरह से संपन्न करने में उतना ध्यान नहीं देता, जैसे तैसे पूरा करना है क्योंकि करना पड़ रहा है मजबूरी में, ये लगता है। और अपनी रुचि होगी, रुचि बढ़ती है जब किसी का महत्व समझ में आता है, महत्ता समझ में आती है। किसी भी साधन में जो प्रख्यात व्यक्ति हैं, उनकी उनका संबंध, उनका वक्तृत्व रूपेण या अधिकारी के रूप में संबंध ज्ञापित करते हैं तो महत्ता बढ़ जाती है। उस दृष्टि से लोक में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो कुछ कार्य करने लगे तो सामान्य जन सोचते हैं कि जब वो कर रहा है इतना प्रसिद्ध व्यक्ति तो कुछ प्रशंसनीय कार्य होगा, हमें भी करना चाहिए, ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती है। उसी दृष्टि से यह वैदिक काल में बड़ी प्रसिद्धि है आचार्य पिप्पलाद जी की। आचार्य पिप्पलाद जी उस समय वेद विद्या के ज्ञाता के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी पूरे वैदिक जगत में मान्यता थी। और वे यदि किसी अर्थ को बताएंगे तो सहज ही आचार्य पिप्पलाद जी जैसे मान्यता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा बताया गया अर्थ है तो प्रशंसनीय होगा, वह हमें भी जानना चाहिए, ऐसी इच्छा होगी। और जिनको बताया है आचार्य पिप्पलाद जी ने उनकी विशेषता भी प्रथम मंत्र में समझ में आएगी। तो सुकेश आदि छह ऋषि वे कृतकर्मा है कृतोपास्ती है, का मतलब अपर जो विद्या है, अपरा विद्या है मुंडक उपनिषद प्रतिपादित, उनका अनुष्ठान कर चुके हैं और अपरा विद्या का जो द्वितीय स्वरूप है उपासना उसमें संलग्न है, कर रहे हैं, बहुत सी उपासना हो चुकी है, कुछ अवशिष्ट है। और वे भी अच्छे वेद के ज्ञाता हैं लेकिन परा विद्या की इच्छा करते हैं और एक सामान्य विद्यार्थी के तरह बड़ी तपस्या, श्रद्धा और सेवादि के साथ गुरु आज्ञा का पालन करते हुए एक वर्ष के दीर्घ काल तक निवास करके उस विद्या को प्राप्त करते हैं। ये सब सुनेंगे तो इससे भी जो विद्या आचार्य पिप्पलाद जी से सुकेश आदि ऋषियों ने प्राप्त की है उसका महत्व हम लोगों को समझ में आएगा। और जिस वस्तु का महत्व ध्यान में आता है, समझ में आता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इसी दृष्टि से ये आख्यायिका है, यानी कथा है, कथा के माध्यम से जब कोई गूढ़ अर्थ भी, कठिन से कठिन अर्थ भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से, कथा के माध्यम से कहा जाता है तो सहज हो जाता है, अनायास समझ में आता है, सरलता हो जाती है, ये भी एक उद्देश्य है। और इस आख्यायिका में जो आचार्य पिपला जी से पराविद्या प्राप्त करते हैं उनकी जो विशेषताएं बताई गई हैं, एक तो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा आदि से वे संपन्न हैं, तो ये जो विशेषताएं ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, वह विशेषताएं उनके अंदर देख करके ये भी ज्ञापित होता है कि ब्रह्मचर्यादि साधन से संपन्न अधिकारी ही प्राप्त कर पाता है पराविद्या को। ये इन सब साधनों की भी जीवन में आवश्यकता है, तप श्रद्धादि की, ये भी ज्ञापन करना है, इसलिए भी आख्यायिका है। तो अब आख्यायिका का प्रारंभ होता है, प्रश्न उपनिषद का प्रारंभ होता है आख्यायिका से। आख्यायिका के अनुसार प्रथम मंत्र में बताया जा रहा है कि सुकेशाश्च भारद्वाज सैभ्यश्च सत्यकामः सौर्यायनी च गार्ग्य कौशल्यश्च अश्वलायन भार्गवो वैदर्भी कबंधी कात्यायन ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एष वै तत्सर्वं वक्षति इति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्ना। ये प्रथम वाक्य है, ब्राह्मण भाग का जो वाक्य होता है उसे कहा जाता है कंडिका, मंत्र भाग का जो होता है उसे कहते हैं मंत्र श्लोक। तो इसमें छह ऋषियों के नाम बताए गए हैं और प्रत्येक ऋषि का एक तो उनका रखा हुआ जो नाम है वो और एक उनके गोत्र का परिचय देने वाला नाम, एक ऐसे दो दो नाम बताए हैं। सुकेश ये नाम है और भारद्वाज उनका भरद्वाज गोत्र है इसलिए भारद्वाज। भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ भारद्वाज। और सत्यकाम एक नाम है ऋषि का और सैभ्य उनके पूर्वज हैं शिबी नाम के ऋषि और शिबी के पुत्र को कहा जाता है सैभ्य, शिबी के कुल में उत्पन्न हुए। और सौर्यायणी गार्ग्य, तो गार्ग्य ये नाम है और सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के कुल में उत्पन्न हुए हैं इसलिए सौर्यायणी कहा जाता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश दो चलते हैं ना, तो इसलिए सौर्यायणी हो गए सूर्यवंशज होने से। और कौशल्य नाम है और अश्वल के कुल में उत्पन्न हुए इसलिए अश्वलायन। भार्गव नाम है, विदर्भ देश में उत्पन्न हुए इसलिए वैदर्भी। और एक कबंधी नाम है और एक कत्य नाम के ऋषि हैं, उनके प्रपौत्र हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है कात्यायन, कत्य के कुल में उत्पन्न हुए कात्यायन। तो इस प्रकार ये छह ऋषि हैं, सुकेश, सत्यकाम, गार्ग्य, कौशल्य, भार्गव, कबंधी। ये छह ऋषि, इन छह के छह कैसे हैं, इनकी विशेषता बताने वाले तीन विशेषण यहां पर बताए जा रहे हैं कि तेह ये ते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा। तो ते ये ते का अर्थ है ये छह के छह ऋषि, ब्रह्म परा है तो ब्रह्म पर कहा जाता है। ब्रह्म शब्द दो विशेषणों में अकेला है और परम ब्रह्म अन्वेषमाणा यहां पर ब्रह्म का एक विशेषण है तीसरे में परम, इसलिए तीसरे विशेषण में ब्रह्म का जो परम ये विशेषण है यह बताता है पूर्व दो विशेषणों में प्रयुक्त जो ब्रह्म शब्द है उससे अपर ब्रह्म को लेना, उससे लेना अपर ब्रह्म को, इसलिए ब्रह्म परा शब्द का अर्थ निकलेगा कि जो अपर ब्रह्म है। तो ब्रह्म दो प्रकार का है ना, उपनिषदों ने बताया हुआ, यद्यपि ब्रह्म एक ही होता है लेकिन उसके अवांतर कई एक भेद हो जाते हैं। मुख्य तो दो भेद हैं, एक सोपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म। निरुपाधिक ब्रह्म को ज्ञेय ब्रह्म कहा जाता है और सोपाधिक ब्रह्म को उपास्य ब्रह्म कहा जाता है। सोपाधिक कहते हैं उपाधि से युक्त, उपाधि वाला। तो उपाधि वाला एक ब्रह्म है और एक बिना उपाधि वाला ब्रह्म है। बिना उपाधि वाले ब्रह्म का एक नाम है परब्रह्म। तो परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, इसमें परम ब्रह्म होगा निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म, और उस उपाधि में भी फिर उपाधि के जितने भेद होंगे उतने सोपाधिक ब्रह्म के भेद हो जाएंगे। उपाधि के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक कारण उपाधि और दूसरी कार्य उपाधि। तो कारण उपाधि वाले ब्रह्म को कहा जाता है सोपाधिक ब्रह्म को ही कारण ब्रह्म, कार्य उपाधि से युक्त ब्रह्म कारण ब्रह्म कहलाता है, और कार्य उपाधि से युक्त ब्रह्म को कहा जाता है कार्य ब्रह्म अपर ब्रह्म। तो जो अपर ब्रह्म है यानी सोपाधिक ब्रह्म है, कार्य उपाधि वाला ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म है, उसे ही समझ रहे हैं पर ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म लेकिन कार्य ब्रह्म को अपर ब्रह्म को वास्तविक ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान न होने से पर ब्रह्म समझ रहे हैं, निरुपाधिक ब्रह्म समझ रहे हैं, वास्तविक ब्रह्म समझ रहे हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में आपने सुना है नारद जी सनत कुमार जी के पास जाते हैं आत्मजिज्ञासु बन करके। नारद जी अपने आप को मानते हैं कि आत्मज्ञ नहीं है, आत्मा का ज्ञान उनको नहीं है, क्योंकि उन्होंने सनत कुमार जी जैसे महापुरुषों से सुना है आत्मज्ञ का लक्षण, और जो लक्षण महापुरुषों से आत्मज्ञ का सुना है नारद जी वह लक्षण अपने आप में घटा करके देखते हैं तो घटित नहीं होता है, इसलिए मानते हैं कि आत्मज्ञ का लक्षण मेरे में नहीं घट रहा है, इसका अर्थ मुझे आत्मज्ञान नहीं है, ये निश्चय कर लेता है। और आत्मज्ञानी बनने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सनत कुमार जी के पास जाता है। तो आत्मज्ञ का लक्षण क्या है, तो नारद जी कहते हैं हमने महापुरुषों से सुना है कि तरति शोकम आत्मवित। छोटा सा लक्षण आत्मज्ञ का बताया है, वो है कि आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता। शोकाकुल करने वाली, चित्त में शोक उत्पन्न करने वाली जो भी परिस्थितियां होती हैं, वो सारी परिस्थितियां उपस्थित होने पर भी यदि शोक न हो तो माना जाता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता, सामान्य व्यक्ति को, आत्मा के अज्ञानी को जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और वह दुख देती है, शोक उत्पन्न करती है, ऐसी स्थिति में भी जिनको शोक नहीं होता वह आत्मज्ञ है। तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञ को शोक नहीं होता। और नारद जी देखते हैं कि जब भी जीवन में कोई प्रतिकूलताएं आती हैं तो नारद जी के मन में दुख होता है, शोक होता है। तो नारद जी मानते हैं कि हम शोक कर रहे हैं इसलिए आत्मज्ञ नहीं है, आत्मज्ञ को शोक नहीं होता। तो नारद जी के तरह हम भी देख लें अपने आप को, अपने मन की पहचान हम स्वयं कर सकते हैं। दूसरे तो अनुमान करते हैं मुखाकृति को देख करके, चेहरा यदि मन चिंतित हो तो बाहर वैसा लगता है, तो अनुमान करते हैं कि सामने वाला कुछ चिंता कर रहा है, लेकिन वास्तविकता मन की परिस्थिति को कई लोग छिपा भी सकते हैं, मन में अपने चेहरे पे अभिव्यक्त नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए दूसरे तो अनुमान लगा सकते हैं लेकिन अपने मन की वास्तविकता तो हम मन का अन्वेषण करके निश्चित कर सकते हैं। सबसे बड़ी साधना है हम अपने आप को, अपने मन की स्थिति को समझें। साधक का पहला लक्षण ही होता है, साधना तो वहां है ना, मन को परिवर्तित करने के लिए साधनाएं होती हैं। हमारी मन की क्या स्थिति है वो समझ में आएगा तो उस स्थिति से मन को ऊपर उठाने के लिए हम शास्त्र ने जो साधन बताया है उसको अपना करके दूसरी स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने मन की स्थिति का पता अवश्य चलना चाहिए। मन कुछ भी करें उसका ज्ञान आपको जरूर रहना चाहिए, आपके संज्ञान में मन का व्यापार होते रहना चाहिए। लेकिन मन कुछ भी कर रहा है और आपको मालूम ही नहीं हो रहा हो तो ये गफलत में रहना जैसा है, वो तो फिर कहीं का कहीं ले जा करके रखेगा। गीता ने कहा कि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम वशी, तद याने आपका, आपके संज्ञान में व्यापार न करने वाला मन वो क्या करता है कि आपकी जो प्रज्ञा है आत्मविषयनी, उस प्रज्ञा को, बुद्धि को बलात् ले जा करके वो जिधर चाहता है ले जाना उधर ले जा करके डाल देता है विषय रूपी खाई में। कैसे? तो कहते जैसे नौका, पतवार से चलने वाली नौकाएं जिस दिशा में वायु चल रही है उस दिशा में नौका जाती है, लेकिन यदि समुद्री तूफान उल्टी दिशा में बहने वाला आ जाए तो वह वायु तेज गति से चलने वाला तूफान नौका को जैसे विपरीत दिशा में ले जा करके तहस नहस कर देता है। इसलिए मन का प्रचार व्यापार हमारे अपनी संज्ञान में होना चाहिए, ज्ञान में होना चाहिए। तो मन जहां कहीं भी जाता है आपके अनुमति से जाता है, तो समझना चाहिए आपने साधना में सफलता पाई है। साधक का मन अधीन नहीं रहता अपने सहसा, तो समझना चाहिए अभी साधना में सफलता नहीं पा रहे हैं। तो नारद जी के मन की स्थिति ज्ञात है। ऐसे हमें भी एक बार गुरु मंत्र लिया है लेकिन जप नहीं होता है, चलेगा। पूजा करने का नियम है लेकिन पूजा नहीं हो पा रही है, चलेगा। स्तोत्र पाठ करने का नियम है, नहीं हो पाता है, चल सकता है। लेकिन मन आपका आपके संज्ञान में रहना चाहिए, क्या कर रहा है ये आपको ज्ञात होना चाहिए, तब वो उससे आप कुछ न कुछ करा सकते हैं आपके कल्याण के साधन। इसलिए सबसे पहला साधन है कि हम अपने मन का निरंतर अन्वेषण करते रहें, उसकी स्थिति को समझते रहें और फिर उसे उस स्थिति से ऊपर उठने का, उसके व्यापार का, चिंतन का विषय यदि ठीक ठीक है तो वैसा ही करने दे, उसे नहीं है तो परिवर्तित कर सकते हैं। तो नारद जी को मालूम है कि मुझे शोक होता है, उनके मन की स्थिति नारद जी को ज्ञात है, इसलिए उसे सुधारने के लिए शास्त्र ने साधन बताया है। शोक करने वाले मन को शोक से रहित करना है, तो मन का जो दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है, उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लो तो फिर मन को शोक नहीं होगा। तो आत्मज्ञान ये शोक निवृत्ति का साधन है, वो प्राप्त करने के लिए नारद जी जाते हैं सनत कुमार जी के पास। और नारद जी को सनत कुमार जी पूछते हैं कि आप जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहते हो, मेरे गुरुकुल के विद्यार्थी बनना चाहते हो, तो पहले आपकी योग्यता बताइए, क्या क्या कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण होकर के पहले आए हैं। तो नारद जी समझा बताते हैं कि चारों वेद, 18 पुराण, 6 वेदांग, उपवेद, 10 विद्याएं, सारे जितने भी हैं ये सब जानते हैं हम। लेकिन आप कहोगे कि आत्मज्ञ होऊंगा तो मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। सो अहम मंत्र विद एव, मैं तो शब्दार्थ को जानता हूं, वेद को जानता हूं का अर्थ। सभी वेद का अध्ययन मैंने किया है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, ब्रह्मा जी ने ही मुझे वेद भी प्रदान किए हैं। लेकिन वेदार्थ मुझे शब्दार्थ ज्ञात है और ब्रह्म शब्दार्थ नहीं है, वाचार्थ नहीं है, मैं वेद के वाचार्थ को जानता हूं। और वेद का जो लक्षार्थ है ब्रह्म, उसे नहीं जानता हूं, आत्मा को नहीं जानता हूं। आप मुझे जैसे आत्मज्ञान के लिए प्राथमिक कक्षा वाला विद्यार्थी होता है ऐसा समझ करके आत्मा का उपदेश करिए। तो कहा ठीक ही है, तो आप तो नाम मात्र के ज्ञाता हैं, तो 15 पर्यायों में तो पहले आत्मा की उपाधि का ही वर्णन किया, नाम की ब्रह्म रूप से उपासना करो करके, चिंतन करो करके, फिर वाक की, तो फिर मन की, तो फिर बल की, तो अन्न की, और अंतिम पर्याय में बताया प्राण। प्राण ही ब्रह्म है ऐसा। और नारद जी गए थे आत्म जिज्ञासु बन करके, ये ब्रह्म परापर नारद जी का व्याख्यान सुना रहा हूं मैं। यहां 6 ऋषियों का विशेषण बताया है कि ब्रह्म परा शब्द का अर्थ है अपर ब्रह्म को ही जो पर ब्रह्म समझ बैठे हैं, उन्हें कहा जाता है ब्रह्म पर। जो पर ब्रह्म नहीं है, अपर ब्रह्म है, लेकिन मान बैठे उसी को पर ब्रह्म, जो उन्हें ब्रह्म परा कहा जाता है। तो ये सुकेश आदि 6 के 6 ऋषि ब्रह्म पर है, मतलब अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म समझ बैठे हैं। कैसे? तो इसके लिए नारद जी को सनत कुमार जी ने समझाया कि नाम ब्रह्म है, वाक ब्रह्म है, मन ब्रह्म है इत्यादि ये सब। और नारद जी को जैसे नाम ब्रह्म ये प्रथम पर्याय में सुना तो उससे भी उत्कृष्ट को जानने की इच्छा हुई, तो प्रश्न किया नाम से भी उत्कृष्ट कोई है क्या। फिर वाक को बताया तो दूसरा प्रश्न हुआ कि वाक से भी कोई उत्कृष्ट है का। ऐसा कहते कहते वहां तक गए और फिर प्राण को 15वें पर्याय में बताया ब्रह्म के रूप में। तो फिर नारद जी को पूर्व पूर्व में 14 पर्याय में जैसा एक अंदर से प्रश्न होता आया कि इससे भी उत्कृष्ट कोई दूसरा है क्या, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था प्राण का ब्रह्म के रूप में उपदेश करने के बाद, क्या प्राण से भी उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। लेकिन नारद जी के मन में प्रश्न हुआ ही नहीं। नारद जी ने समझ लिया कि प्राण ही वास्तविक ब्रह्म है, आत्मा है, मैं जिसको जानना चाहता हूं वह प्राण ही है। क्योंकि प्राण का वर्णन करते समय बताया कि ये सारा संसार प्राण के ही आश्रित है। कैसे? तो रथ के नाभि में जैसे रथ चक्र के अरे होते हैं, ऐसे प्राण के आश्रित ही ये पूरा संसार है। पूरे संसार को धारण करके रखने वाला प्राण है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। और ये सुनकर के नारद जी की जिज्ञासा शांत हुई का अर्थ है वो प्राण को ही मान बैठे आत्मा ब्रह्म, मैं जिसको जानना चाहता हूं वह यह प्राण ही है, ये जान बैठे। ऐसे ही यहां वो ब्रह्म परा, इसमें ब्रह्म शब्द से लेना अपर ब्रह्म, वह अपर ब्रह्म है नारद जी जिसे ब्रह्म समझे शुरू में प्राण को ही, वह प्राण है अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म उसे कहा जाता है, और उसे पर ब्रह्म समझना ये ब्रह्म परा। और ब्रह्मनिष्ठा, वो ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है उस अपर ब्रह्म की ही मैं के रूप में निरंतर उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने आप को वह सुकेश आदि 6 ऋषि समझते हैं अपर ब्रह्म रूप, अहंग्र उपासना कर रहा है, वो शरीर रूप नहीं समझ रहा है। जो अपने आप को शरीर ही समझेगा उसको ब्रह्म जिज्ञासा होगी भी नहीं, यानी अन्नमय कोष से ऊपर उठ गए हैं वे। और तत्पदार्थ के विषय में जो स्थूल कार्य उपाधि हैं समष्टि ब्रह्मांड, वहां से तो उनकी समझ हट गई है, लेकिन समष्टि प्राण को ही ब्रह्म समझ रहे हैं और उसी का अहंग्रह चिंतन कर रहे हैं। उसे कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठा। समष्टि प्राण की अहंग्रह उपासना करने वाले वो हैं ब्रह्मनिष्ठा। ये पराविद्या जिनको प्राप्त करनी है उनके विशेषण बताए जा रहे हैं कि उन्हें अपर ब्रह्म ही पर ब्रह्म रूप से ज्ञात है, वहां तक पहुंचे हुए हैं, उनके मन की स्थिति ये है। तो फिर ये उपासना जो होती है ना शास्त्रीय उपासना, जो भी साधना करते हैं साधक और उसमें लगे रहते हैं तो साधना का फल होता है उत्तरोत्तर। जब तक पूर्ण ब्रह्म की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक उत्तर उत्तर साधन के ओर अग्रसर करना, ये पूर्व पूर्व साधन का फल होता है। जैसा जैसा परिपक्व होगा साधन, ऐसे वह उत्तर उत्तर साधन के ओर ले जाता है। तो ये ब्रह्म पर हैं अपर और ब्रह्मनिष्ठ हैं, यानी कृतोपास्ती हैं और कृतकर्मा है। अपर विद्या जिसके जीवन में ठीक ठीक सन्निविष्ट है, उतरी हुई है, अपर विद्या का अनुष्ठान जिसने किया है, कर्म जिसने किया, उसे कृतकर्मा कहा जाता है। उसका फल होता है चित्त की शुद्धि। उपासना भी अपर विद्या है और उस अपर विद्या का फल है चित्त का स्थैर्य, एकाग्रता। और जब अपरा विद्या का फल जीवन में आ जाता है चित्त का नैर्मल्य और ऐकाग्र, यानी शुद्ध चित्त तथा समाहित चित्त हो जाता है। यह अपर विद्या का फल है। तो उसके अंदर फिर परब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो नारद जी प्राण को आत्मा के रूप से समझे शुरू में, और फिर सनत कुमार जी ने थोड़ा निर्देश किया कि यह पूर्ण ब्रह्म नहीं है, आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। तो तुरंत फिर आत्मजिज्ञासा और परब्रह्म की जिज्ञासा नारद जी को होती है। ऐसे ही ये जो छह ऋषि हैं, कृतकर्मा हैं, कृतोपास्ती हैं, इसलिए शुद्ध चित्त हैं और समाहित चित्त हैं। तो शुद्ध और समाहित चित्त में परब्रह्म जिज्ञासा होती है, परब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। इसीलिए एक तीसरा विशेषण है परम ब्रह्म अन्वेषमाणा। ये ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा इन विशेषणों का फल है। इन विशेषणों से बताए गए जो साधन है उन साधन की फलावस्था को बताने वाला विशेषण है परम ब्रह्म अन्वेषमाणा। ये परम ब्रह्म है ज्ञेय ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। उपास्य ब्रह्म की तो उपासना कर चुके हैं, उसका फल होता है समाहित चित्त, शुद्ध चित्त होना। और शुद्ध चित्त की पहचान है उसमें ब्रह्म जिज्ञासा होती है। जो एकाग्र तथा शुद्ध चित्त होगा, साधन चतुष्टय संपन्न होगा, मुमुक्षा उसके अंदर होगी, मुक्त होने की इच्छा होगी, तो फल की इच्छा साधन की इच्छा को उत्पन्न करती है। वो मोक्ष फल है, उसका साधन है परब्रह्म ज्ञान। तो परब्रह्म को जानने की इच्छा होगी, परब्रह्म की जिज्ञासा होगी, और जिसको परब्रह्म की जिज्ञासा है वह परब्रह्म को जानने के लिए परब्रह्म की खोज करेगा, अन्वेषण करेगा। का मतलब परब्रह्म ज्ञान के साधनों में लगेगा, यही खोज है। तो इसलिए कहते हैं परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, ये परब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं छह के छह ऋषि। तो शास्त्र कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जिस साधन को प्राप्त करने की इच्छा है वह साधन निष्णात जो व्यक्ति होगा उसके पास में उस साधन को प्राप्त करने की इच्छा जाने की प्रेरणा करती है। तो यहां पर ब्रह्म की जिज्ञासा है, मोक्ष का साधन परब्रह्म का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञानी के पास ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा जाने की प्रेरणा देगी, ब्रह्म ज्ञानी के पास जाएंगे। तो ऐसा ही इन छह ऋषियों के जीवन में भी देखने को मिल रहा है कि परम ब्रह्म अन्वेषमाण है, तो देखते हैं कि हमारी ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने की योग्यता उस समय पर ब्रह्म में निष्णात के रूप में बड़े प्रसिद्ध जो थे आचार्य पिप्पलाद जी, उनके पास गए। किस उद्देश्य से गए, तो उद्देश्य बताया जा रहा है येष हवै तत्सर्वं वक्ष्यति इति तेह समित्पानयः भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्ना। तो भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्ना, उपसन्ना का अर्थ होता है विधिवत शरणागत हुए, उनके पास गए आचार्य पिप्पलाद जी के पास, और वे भगवान हैं। भगवान का अर्थ है समर्थ। इनको जिसकी खोज है उसे उपलब्ध कराने की सामर्थ्य आचार्य पिप्पलाद जी में है, ये यहां पर भगवंतम इस विशेषण के द्वारा बताया जा रहा है। और एष हवई, इसमें एष यह सर्वनाम बताता है आचार्य पिप्पलाद जी को, कहते आचार्य पिप्पलाद जी एक इस समय धराधाम पर ऐसे हैं जो हम लोगों को जिज्ञास्य हैं, हम लोग जिसको जानना चाहते हैं वो सब बताने की योग्यता रखते हैं। इसलिए एष हवै तत्सर्वं वक्षति, यानी तत्सर्वं से लेना हम लोगों का जिज्ञास्य, हम लोग जिसको जानना चाहते हैं उन सब को बताएंगे एष, यानी आचार्य पिप्पलाद जी। इस उद्देश्य से अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं आचार्य पिप्पलाद जी, ये समझ करके निश्चय करके आचार्य पिप्पलाद जी के पास सुकेश आदि छह ऋषि जाते हैं। कैसे जाते हैं, तो कहते हैं समित्पानयः। तो समित्पानी, उसमें पहले ऋषियों के यहां अग्निहोत्र हमेशा होता रहा ना, हवन आदि देवताओं का आराधन, तो उसके लिए फिर समिधाओं की जरूरत होती है। तो हाथ में समिधाएं लेकर के गए का अर्थ है समिधा होती है सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी जलती है ठीक ठीक। तो ऐसे अपरा विद्या और अपरा विद्या का जो फल है यानी साध्य साधनात्मक जो संसार है, इस संसार विषय को जो वासना है लोकेशना वित्तेशना और पुत्रेशना, लोकेशना है साध्येशना, वित्तेशना और पुत्रेशना है साधनेशना। संसार है त्रिलोकी, ये पृथ्वीलोक अंतरिक्ष स्वर्गलोक और देवलोक, देवलोक यानी ब्रह्मलोक इतना माना जाता है संसार। भूर्भुव स्वः और इस संसार इसे लोक शब्द से कहा जाता है फल को, और इसका साधन है तीन लोकों के साधन बताए गए हैं तीन, वो है पुत्र और दो प्रकार का वित्त, एक मानुष वित्त है, मानुष वित्त से लिया जाता है मानुष वित्त साध्य कर्म को, और एक दैव वित्त है उसे कहा जाता है उपासना। इसलिए वित्त शब्द से एक प्रकार से मुंडक उपनिषद में बताई गई जो अपरा विद्या है उस अपरा विद्या को लेना कर्म और उपासना को, और पुत्र शब्द से संतान। तो ये जो संसार अंतपाती पृथ्वी लोक है इसकी प्राप्ति का साधन बताया गया है पुत्र को, पुत्रेण अयम लोको जय्या, पुत्र यानी संतान। तो संतान से इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति होती है का अर्थ है इस शरीर के छूटने के बाद भी आप इस पृथ्वी लोक के ही विषयों का उपभोग करना चाहते हैं, तो इस शरीर के न रहने पर भी दूसरा रूप धारण करके आप इस पृथ्वी लोक के विषयों का उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा वै पुत्र रूपेण जायते करके कहा जाता है। यह माता पिता ही संतान का रूप धारण करके प्रकट होते हैं का अर्थ है माता पिता का दूसरा रूप है संतान उनकी, और उस रूप से दूसरे रूप से माता पिता रूप से न रहने पर भी संतान के रूप में इस संसार में रह करके इस लोक के विषयों का उपभोग किया जा सकता है, एक वो है। और कर्मणा पितृलोक, पितृलोक है स्वर्गलोक, वो कर्म से प्राप्त होता है वित्त शब्द से ग्राह्य जो कर्म है, और दूसरा दैव वित्त है उपासना, उपासना से प्राप्तव्य लोक है ब्रह्मलोक। तो ये संसार के प्राप्ति के तीन साधन हैं पुत्र कर्म उपासना, इसे कहा जाता है साधन येषणा, और साध्य येषणा है लोकेशना। तो ये साध्य येषणा तथा साधन येषणा जब तीव्र होती है तो मानी जाती है अभी सरस है, सुखी नहीं है, संसार के अंतपाती तीन लोकों के ही भोगों की अंतकरण में इच्छा ज्यादा है, तीव्र है, तो माना जाता है अभी ये सुखी हुई वासना उस समित के तरह समित नहीं है, और इन ये सुखी हुई है जिसकी, तो समिधा जैसी समिधा मानी जाती है का मतलब सुखने का अर्थ है इनके प्रति वैराग्य, साध्य साधनात्मक संसार के प्रति वैराग्य है, वो होता है शुद्ध तथा समाहित चित्त में। और ये समित पानी होकर के गए हैं का अर्थ है साध्य एषणा तथा साधन एषणा रहित होकर के पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य पिपलाद जी के पास गए हैं। वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा तभी हो पाती है जब हमारी साध्य एषणा तथा साधन एषणा समिधा के तरह सूख जाती है। तभी वो ब्रह्म जिज्ञासा वो आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास ले जाती है। इस प्रकार ये प्रथम मंत्र पर हम लोग यथामति विचार कर चुके हैं। द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।